क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज के लिए जो विषय चुना गया है वो है मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे मध्य में श्री प्रहलाद राम शरण जी हैं। श्री प्रहलाद राम शरण जी के बारे में दो शब्द। श्री प्रहलाद राम शरण जी 23 सालों तक माध्यमिक स्कूल में हिंदी के अध्यापक रहे। ग्रेजुएशन से पहले आप 5 सालों तक प्राथमिक पाठशाला में हिंदी अध्यापक रहे। माध्यमिक स्कूल में अध्ययन के साथ साथ आप साहित्य सृजन करते रहे। आपकी अब तक 75 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें लोक साहित्य की पुस्तकें, अनुसंधानात्मक निबंध और मॉरिशस का इतिहास शामिल है। आपकी रचनाओं में गांधी जी, मनीलाल डॉक्टर, पंडित आत्माराम और पंडित काशीनाथ किस्तो के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इन पुस्तकों के जरिए आपने बताया कि इन्होंने हिंदी, भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के संरक्षण में विकास का योगदान दिया है। श्री प्रहलाद रामचरण जी नमस्कार।
नमस्कार।
और स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं कुछ प्रश्न की ओर। मॉरिशस में हिंदी समाचार पत्रों की शुरुआत कब और कैसे हुई, अपने विचार व्यक्त कीजिए।
मॉरिशस के संदर्भ में यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे पूर्वज जब यहाँ पर आए, फ्रेंच साहित्य और फ्रेंच पत्रकारिता बहुत प्राउड अवस्था में
जी,
और 20वीं शताब्दी के शुरू में गांधी जी 18 दिनों के लिए यहाँ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। 6 साल बाद वो मनीलाल डॉक्टर को भेजते हैं, वो बैरिस्टर थे बड़ौदा के, और कहते हैं कि जाकर मॉरिशस के लोगों की सेवा कीजिए। मनीलाल डॉक्टर जी 1907 में आते हैं और जैसे आते हैं, वो बैरिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट में गए। मॉरिशस में फ्रेंच पत्रकारिता जो की है 18वीं शताब्दी से यहाँ पर चालू हो गई थी और उस समय तक करीब 150 पत्र पत्रिकाएं छप चुकी थी। ऐसी अवस्था में जब उनको उत्तर देना था, अंग्रेजी में उन्होंने लेख लिखा और फ्रेंच पत्रों को दिया, तो देखते हैं कि 1 सप्ताह नहीं छापते हैं, 2 सप्ताह नहीं छापते हैं। तब अब वो सोचने लगे कि इस अवस्था में मैं क्या करूं, और तब उन्होंने सोचा कि जब तक भारतवंशियों का एक पत्र नहीं होगा तो मान लो कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तब उन्होंने कुछ व्यापारियों से मिल करके चंदा इकट्ठा किया, एक प्रेस का प्रबंध किया, हिंदुस्तानी प्रेस
जी।
और हिंदुस्तानी पत्र जो कि है उन्होंने चालू किया 15 मार्च 1909 से
जी।
1909 से 1910 तक वो एक पृष्ठ अंग्रेजी में और एक पृष्ठ गुजराती में वो छपता रहा। तब देखा कि गुजराती तो केवल कुछ
कम लोग,
पोर्टुगीज के व्यापारी लोग हैं, यहाँ पर ज्यादा लोग हिंदी जानने वाले थे। तब 1910 से उन्होंने उसको हिंदी में कर दिया।
नाम क्या रखा था?
हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तानी।
तो उसमें एक पृष्ठ होता था हिंदी अंग्रेजी के लेख, दूसरे पृष्ठ होता था हिंदी के लिए। तो हिंदी की शुरुआत जो की है मनीलाल डॉक्टर के जरिए 1910 में शुरू होता है। इससे पहले कोई प्रकाशित चीजें यहाँ पर थी ही नहीं, और उनको मालूम था कि वो तो बैरिस्टर हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे
जी।
तो हिंदुस्तानी का संपादन के लिए पूना से उन्होंने पंडित आत्माराम को बुलाया। उनको मालूम था कि पंडित आत्माराम एक पत्रकार हैं और उनके कार्यों से प्रभावित होकर के मॉरिशस के 2 नौजवान एक बैरिस्टर बनने गए, आर के बुधन इंग्लैंड
जी,
और पंडित काशीनाथ किस्तो भारत गए धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने। और ये संयोग है कि वो बैरिस्टर बन करके, आर के बुधन 1915 में आते हैं, पंडित काशीनाथ किस्तो भी 15 में
साथ
लाहौर से वैदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान बन करके और पत्रकारिता में दक्षता हासिल करके वो लौटे, और उन्होंने जाने से पहले पंडित आत्माराम ने एक काम ये भी किया, आर्य समाज की विधि विधिवत स्थापना की, और 11 में जब जाने लगी तो उन्होंने अपना प्रेस और अपनी पत्रिका आर्य समाज को सुपुर्द कर दिया।
अच्छा
अच्छा, उसी के जरिए मॉरिशस में हिंदी आंदोलन चला है। सौभाग्य से हमारे लेखागार में 1913 के एक अंक कोई जाकर के देख सकता है, उसमें एक पृष्ठ पर होली पर एक कविता है और होली पर एक गद्य लेख है हिंदी की, वही मान लो कि ये ओरिजिनल जो कि है मौलिक सामग्री हमारे पास है। और उन्होंने पंडित आत्माराम को बुलाया, पंडित काशीनाथ किस्तो आए, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत सारी पत्रिकाएं बंद होती गई, ये 8-10 वर्ष कुछ नहीं निकला मॉरिशस में, लेकिन पंडित ये काशीनाथ किस्तो ने आर्य समाज को संगठित किया, हिंदी की पढ़ाई चालू की, और मॉरिशस आर्य पत्रिका को उन्होंने जन्म दिया आर्य समाज की ओर से 1911 में। हिंदुस्तानी के बाद हिंदी आंदोलन में मॉरिशस आर्य पत्रिका, लेकिन वो भी 3 साल चल करके बंद हो गया। अब हम 1920 में आते हैं
जी,
तो राम खिलावन बुधन जो की थे उन्होंने सोचा कि मैं उम्मीदवार रखूंगा चुनाव के अवसर पर 21 में। तब उन्होंने रोज हिल के एक कौलेसर सिंह महोदय के साथ मिल करके उन लोगों ने मॉरिशस इंडियन टाइम्स निकालना 1920 से शुरू किया, दिसंबर से चुनाव था 21 में।
अच्छा, आप हिंदी की बात बता रहे हैं,
तो वो 2 पृष्ठ पर हिंदी में निकलता था, 2 पृष्ठ पर हिंदी में।
अच्छा, दोनों विषय,
दोनों विषय,
दोनों भाषा।
और दैनिक पत्रिका उन्होंने निकाला, चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, चुनाव के अवसर पर क्या होता है, 1921 में, 1926 में, 1931 में
जी
भारतीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, 2-2, 3-3, 10-12 कविताएं आ जाती हैं। तो शुरुआत के दौर में मनीलाल डॉक्टर का जो हिंदुस्तानी था वो भी राजनीतिक, भारतवंशियों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए
जी।
और शुरू के मॉरिशस इंडियन टाइम्स जो 1920 से वो चालू होता है और 24 तक आते आते, वो तो निर्वाचित नहीं होते हैं लेकिन सरकार उनको मनोनीत कर लेते हैं, 24 तक आते आते आर्थिक हानि के कारण वो पत्र बंद हो जाता है दैनिक
जी।
तब मॉरिशस के और एक धनी मानी व्यक्ति राजकुमार गजाधर, वो भी सोचते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा 26 में, तो 24 से उन्होंने मॉरिशस मित्र चालू किया, मॉरिशस इंडियन टाइम्स का काम चालू रहा, नाम बदल गया मॉरिशस मित्र
जी।
और रामावध शर्मा उसके संपादक रहे, हिंदी के संपादक रहे, और पंडित आत्माराम लिखते रहे इन सब में
जी। हाँ,
तो 1920 से 1932 तक ये दोनों पत्रिकाएं दैनिक निकलती रही।
कितनी प्रतियां निकलती थी आपके यहाँ?
अच्छा, मेरे देखने उस समय 500-600 निकलता था, कहीं पर मेंशन है 400-500, क्योंकि ग्राहक तो बहुत थे नहीं, लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण वो भी। और आर्य समाज पुनः 1924 से उन्होंने मॉरिशस आर्य पत्रिका निकालना शुरू किया, पंडित काशीनाथ किस्तो उसके संपादक बने। तो इस प्रकार से मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है और उसके जरिए हिंदी लेखक पैदा होने लगे एक एक करके।
अच्छा अच्छा,
काशीनाथ किस्तो
जी,
फिर बेनीमाधव सतीराम भारत से पढ़ करके आए, तो 2 वर्ग बन गए और दोनों वर्गों की ओर से 2 पत्र, मॉरिशस आर्य पत्रिका और 1929 से आर्य वीर पत्रिका। राजनीतिक विषय उसमें होते थे, सांस्कृतिक विषय होते थे, साहित्यिक विषय होते थे,
साहित्य।
अच्छा, एग्रीकल्चर क्यों हमारे लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, पंडित काशीनाथ किस्तो लिखते हैं
जी। तो इस प्रकार से उन दिनों के पाठकों को कुछ पढ़ने का की सामग्री मिल जाती,
बहुत सामग्री मिलती थी, उजागरण का समय था
जी।
समझ में आया ना? तो 26 में 2 उम्मीदवार राजकुमार गजाधर और धनपत लाला निर्वाचित हो गए
जी।
और आप उस समय करीब 20-25 कविताएं लिखी गई हैं और ये
इसके अलावा और कई विषय थे ना,
और विषय थे धार्मिक विषय,
धार्मिक।
शुरू की जो भाषा थी पुरानी हिंदी होती थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब देखिए पंडित विष्णु दयाल जी, जय नारायण रॉय जी 24 में वो जाते हैं पढ़ने, पंडित विष्णु दयाल जी 33 में जाते हैं। तो जब ये लोग आएंगे तो ये तो प्रकांड विद्वान बनकर के 40 में आएंगे ना
जी। हाँ।
लेकिन उनसे पहले यहाँ पर मोतैलोंग में भगत जी हुए, जो 35 से 38 तक उन्होंने हस्तलिखित दुर्गा पत्रिका का सृजन किया। तो उसमें साहित्यिक लेख हैं, कहानी, कविता, ये सब दुर्गा में छपी है। बहुत सा कार्य हुआ है उन 13 वर्षों में जब दैनिक पत्र निकलते थे, लेकिन उनमें शोध कार्य नहीं हुआ है,
क्योंकि खोज कार्य के लिए बहुत से विषय उसमें आ सकते,
बहुत सारे विषय हैं, और उसको हमको निकालना है, निकाल करके उसका विश्लेषण संश्लेषण करना है, तब हम ये बता सकेंगे कि हिंदी साहित्य किस प्रकार से विकसित हुआ है मॉरिशस में। हम 50 की बात, 60 की बात नहीं करते हैं, हम वर्तमान समय की बात नहीं करते हैं, जब अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर चिंतामणि जी, धरामदेव धुरंधर, प्रहलाद रामचंद्र जी इस क्षेत्र में आते हैं, ये तो बहुत बाद की बात,
बाद की बात,
लेकिन शुरू की जो बात है उस पर हम खड़े हैं आज, तो उसका अनुसंधान होना चाहिए और उसका विश्लेषण संश्लेषण बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए।
कोई संदेश देना चाहेंगे अब?
मैं तो विश्वविद्यालय के छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि हर एक विषय पर आप जाकर के इन जो दैनिक पत्र निकले हैं 13 वर्ष, उसमें संशोधन करके उस पर डॉक्टरेट आप लीजिए।
बिल्कुल।
और जो उसमें रत्न पड़े हुए हैं उसको ला करके हम जनता के सामने रखिएगा।
तो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है, मगर बहुत अच्छा रहेगा
इस पर अगर हमारी नवयुवक नवयुवती काम करेंगी तो।
तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर पहले आप श्री प्रहलाद रामचरण जी को सुन रहे थे, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। विशेष धन्यवाद श्री प्रहलाद रामचरण जी को जाता है। तो अगले क्षितिज कार्यक्रम तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा